अध्याय 47 गिबोनियों के साथ मेल। ये अध्याय यहोशू 9 और 19 पर आधारित है। शेकेम से इज़राइली गिलगाल में अपनी छावनी में लौटे। यहां पर कुछ ही समय पश्चात एक अद्भुत प्रतिनिधिमंडल उनसे भेंट करने आया और उसके सदस्य इज़राइलियों के साथ संधि करने के इच्छुक थे। प्रतिनिधियों को देखकर लग रहा था कि वे दूर के देश से आए थे और उनके रूप रंग से इस बात की पुष्टि हो गई। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, सामग्री में फफूंदी लगी थी और मदिरा की मशकें फटी और जोड़ लगी हुई थीं, मानो यात्रा के दौरान जल्दी जल्दी उनकी मरम्मत की गई हो। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की सीमा के परे उनके दूर के देश में उनके सह देशवासियों ने परमेश्वर द्वारा उसके लोगों के लिए किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना था और उन्होंने इन्हें इज़राइल के साथ वाचा बांधने को भेजा था। इब्रियों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई थी कि वे कनान के मूर्ति पूजकों के साथ किसी तरह की वाचा नहीं बांधे और अगुओं के मन में इन आगंतुकों के शब्दों की सच्चाई के संदर्भ में आशंका हुई। उन्होंने कहा, क्या पता तुम हमारे ही मध्य में रहते हो? इस पर प्रतिनिधियों ने कहा, हम तेरे दास हैं। लेकिन जब यहोशू ने उनसे प्रत्यक्ष प्रश्न किया, तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो उन्होंने अपना पहला कथन दोहरा दिया और अपनी सत्यनिष्ठा के प्रमाण में कहा, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले थे, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से ये रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा की मशकें हमने भर ली थीं, तब तो नई थीं, परंतु देखो अब ये फट गई हैं और हमारे ये वस्त्र और जूते बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुराने हो गए हैं। ये प्रस्तुति सफल रही। इब्रियों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनसे यह वाचा बांधी कि उन्हें जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। इस प्रकार वाचा बांधी गई। 3 दिन पश्चात सच्चाई का पता लगा। उन्होंने सुना कि वे उनके पड़ोस के रहने वाले लोग थे और उनके ही मध्य में बसे थे। यह जानते हुए कि इब्रियों का प्रतिकार करना असंभव था, अपने जीवन सुरक्षित रखने के लिए गिबोनियों ने छल का सहारा लिया। जब इज़राइलियों को उन पर प्रयोग किए गए छल का पता चला, वे घृणा और क्रोध से भर गए, और ये क्रोध और भी बढ़ गया जब 3 दिन की यात्रा के पश्चात वे प्रदेश के बीच गिबोनियों के शहरों में पहुंचे। सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कड़ाने, लेकिन गिबोनी वाचा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि उन्होंने वह धोखे से बांधी थी, क्योंकि प्रधानों ने उनके साथ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी, इसलिए इज़राइलियों ने उनको नहीं मारा। गिबोनियों ने मूर्ति पूजा का परित्याग करने की और यहोवा की आराधना करने की प्रतिज्ञा की थी, और उनके द्वारा मूर्ति पूजक कनानियों को जीवित छोड़ देना परमेश्वर की उनका विनाश कर देने की आज्ञा की अवमानना नहीं था। इस प्रकार अपनी शपथ द्वारा वे पाप न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। हालांकि वाचा धोखे से बांधी गई थी, उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता था। लाभ, प्रतिशोध या स्वार्थ का कोई भी विचार या तर्क वाचा या शपथ की पवित्रता को किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकता। नीति वचन 12:22 में लिखा है, ऐसे होठों से यहोवा घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं। वह जो यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है, वह वही है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। भजन संहिता 24:3, 15:4। गिबोनियों को जीवित रहने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें दासोचित कार्य करने के लिए वेदी के लिए सेवकों के रूप में नियुक्त किया गया। यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और परमेश्वर की वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त किया। उन्होंने धन्यवाद के साथ यह शर्तें स्वीकार की, यह जानते हुए कि वे दोषी थे और किसी भी शर्त पर वे जीवन प्राप्त करने में प्रसन्न थे। उन्होंने यहोशू से कहा, अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसे ही व्यवहार हमारे साथ कर। कई सदियों तक उनके वंशज वेदी की धर्म क्रियाओं के साथ जुड़े रहे। गिबोनियों का राज्य क्षेत्र 4 शहरों से बना था। लोग राजा के शासन के अधीन नहीं थे, वरन पुरनियों या प्रधानों द्वारा शासित थे। गिबोन उनका सबसे महत्वपूर्ण शहर, बड़ा नगर, वरन राजनगर के तुल्य था और उसके सब निवासी शूरवीर थे। उस डर का जो इसराइलियों ने कनान के निवासियों के मन में बैठा दिया था, विस्मयकारी प्रमाण है कि ऐसे नगर के लोगों ने अपने प्राण बचाने के लिए ऐसे अपमानजनक साधन का सहारा लिया। लेकिन यदि गिबोनियों ने इसराइलियों के साथ सच्चाई से समझौता किया होता तो उनके लिए अधिक अच्छा होता। यहोवा को समर्पण करने से उनके जीवन तो संरक्षित हो गए, लेकिन उनके छल के कारण उन्हें दासत्व और अपमान को सहना पड़ा। परमेश्वर ने प्रयोजन रखा था कि जो भी अधर्म का त्याग करेगा और स्वयं को इसराइल के साथ जोड़ेगा, वो वाचा से जुड़ी आशीषों का भागीदार होगा। वे इस पद में सम्मिलित थे, वे परदेशी जो तेरे मध्य रहते हैं। और कुछ चीजों को छोड़, ये वर्ग भी इसराइल के समान वही विशेषाधिकार और समान सुविधाओं का आनंद लेता। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे साथ रहे वो तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना। लेव्य व्यवस्था 19 आयत 33-34। फसा के पर्व और बलि की भेंट से संबंधित ये आदेश दिया गया मंडली के लिए, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहराता है। गिनती 15 आयत 15। यदि गिबोनियों ने छल का सहारा नहीं लिया होता तो ऐसा था वो आधार जिस पर उन्हें ग्रहण किया जाता। राजनगर, जहां के सभी पुरुष शूरवीर थे, के नागरिकों के लिए ये कम अपमानजनक नहीं था कि उन्हें और उनकी सभी पीढ़ियों को लकड़हारे और पानी भरने वाले बनाया गया। लेकिन धोखे के प्रयोजन के लिए उन्होंने दरिद्रता का वेश धारण किया और वो उन पर चिरस्थायी दासत्व के चिन्ह के रूप में बांध दिया गया था। इस प्रकार अब से लेकर आगे की सभी पीढ़ियों के लिए उनकी दासत्व की अवस्था परमेश्वर की झूठ के लिए घृणा की साक्ष्य होगी। गिबोन का इसराइलियों के सम्मुख समर्पण ने कनान के राजाओं को भय और उत्साहीनता से भर दिया। घुसपैठियों के साथ समझौता करने वालों से प्रतिशोध लेने के लिए तत्काल कदम उठाया गया। यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक के नेतृत्व में कनानी राजाओं में से 5 राजाओं ने गिबोन के विरुद्ध संधि की। उनकी गतिविधियां तेज थी। गिबोन बचाव के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने गिलगाल में यहोशू के पास संदेश भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। ये खतरा केवल गिबोन के निवासियों के लिए ही नहीं, वरन इसराइल के लिए भी धमकी था। मध्य और दक्षिणी फिलिस्तीन जाने के लिए मार्गों पर इस नगर का अधिकार था और देश पर विजय प्राप्त करने के लिए इसको अधिकार में रखना आवश्यक था। यहोशू ने गिबोन की सहायता के लिए जाने की तत्काल तैयारी की। घिरे हुए नगर के निवासियों को डर था कि उनके द्वारा प्रयोग किए गए छल के कारण यहोशू उनके निवेदन को अस्वीकार कर देगा, लेकिन उन्होंने इसराइल के नियंत्रण में होना स्वीकार कर लिया था और परमेश्वर की आराधना करने से सहमत हो गए थे। इसलिए उसे लगा कि उनकी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। इस बार वो ईश्वर के परामर्श बिना आगे नहीं बढ़ा और परमेश्वर ने इस कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित किया। ईश्वरीय संदेश था, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगल से चल पड़ा। सारी रात चलकर वो प्रातःकाल को अपनी सेना गिबोन के सम्मुख ले आया। संघ के राजाओं ने अपनी सेनाओं को नगर के आसपास एकत्रित किया ही था कि यहोशू एकाएक उन पर टूट पड़ा। इस चढ़ाई का परिणाम ये हुआ कि आक्रमणकारी पूरी तरह से घबरा गए। वो विशाल सेना यहोशू के सामने से पहाड़ी रास्ते से होकर बेथोरोन को भाग गई और ऊंचाई पर पहुंचकर तेजी से वृष्टि हुई। यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। किले समान पर्वतों में शरण पाने के उद्देश्य से एमोरी बिना सोचे समझे भागते रहे और टीले के ऊपर नीचे देखते हुए यहोशू को लगा कि उसके काम की कार्यसिद्धि के लिए दिन बहुत छोटा था। यदि उन्हें पूर्ण रूप से बाहर नहीं किया गया तो उनके शत्रु फिर से शक्ति जुटाकर नए सिरे से संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, तू गिबोन पर और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने ठहरा रहा और लगभग चार पहर तक न डूबा। सांझ होने से पहले यहोशू से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा परिपूर्ण हुई। शत्रु की समस्त सेना उसके हाथ में दे दी गईं। उस दिन की घटनाएं इतनी लंबी थीं कि वे इसराइल को हमेशा याद रहीं। न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता है। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू कोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने अन्य जाति को कोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हबक्कूक 3:11-13। यहोशू की प्रार्थना को परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरित किया ताकि इसराइल के परमेश्वर की सामर्थ का फिर से प्रमाण दिया जा सके। इस प्रकार विनती ने महान अगवे की ओर से घमंड नहीं दिखाया। यहोशू से प्रतिज्ञा की गई थी कि परमेश्वर ही इसराइल के शत्रुओं को पराजित करेगा, लेकिन फिर भी उसने इतना उत्साहपूर्वक प्रयत्न किया मानो सफलता केवल इसराइल की सेनाओं पर निर्भर थी। उसने वो सब किया जो मानवीय शक्ति के वश में था और फिर विश्वास से ईश्वरीय सहायता के लिए प्रार्थना की। ईश्वरीय सामर्थ्य के साथ मानवीय प्रयत्न का मेल ही सफलता का रहस्य है। जो सबसे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करते हैं वो वे लोग होते हैं जो पूरी तरह सर्वशक्तिमान पर निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति ने आदेश दिया, हे सूर्य, तू गिबोन पर और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा, ये वही था जो गिलगल की छावनी में घंटों तक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने वाले मनुष्य सामर्थ्यवान होते हैं। ये प्रभावशाली आश्चर्यकर्म प्रमाणित करता है कि सृष्टि सृष्टिकर्ता के नियंत्रण में है। शैतान इस नैतिक संसार में ईश्वरीय साधन को मनुष्य से छुपाना चाहता है। पहले महान उद्देश्य की अथक प्रक्रिया को अदृश्य रखना चाहता था। इस आश्चर्यकर्म में जो भी प्रकृति के परमेश्वर से श्रेष्ठ समझता है वह तिरस्कृत है। परमेश्वर अपनी इच्छा से उसके शत्रुओं की शक्ति को पराजित करने के लिए प्रकृति की शक्तियों को बुलाता है, अग्नि और ओले, हिम और कोहरा, और उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। भजन संहिता 148:8। जब अधर्मी एमोरी उसके उद्देश्यों का प्रतिरोध करने के लिए अड़ गए, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। उसने इसराइल के शत्रुओं पर आकाश से बड़े बड़े पत्थर बरसाए। हमें पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों में एक महान युद्ध के घटित होने के बारे में कहा गया है, जब यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला। यिर्मयाह 50:25। उसने पूछा, क्या तू कभी हिम के भंडार में गया, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसकी मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? अय्यूब 38:22-23। भविष्यद्वक्ता होने वाले विनाश का वर्णन करता है जो तब होगा जब मंदिर के सिंहासन से ये प्रभावशाली स्वर घोषणा करेगा, हो चुका। वो कहता है, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। प्रकाशित वाक्य 16:17-21।